All mein Herz zu ihm sich nahe. Dear brothers and sisters in the Lord,
Prabhu Yeshu Masih mein mere pyare bhaiyo aur behno, aaj Zurich se is sabha mein hum aap sabka khair magdam aur abhinandan karte hain aur Prabhu Yeshu Masih ke naam mein. Hum bade aabhari hain, shukrguzar hain
that we have a great almighty God,
कि हमारे पास एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कामिल खुदावंद है, जो हमारी देखरेख करता है, हमारी अगुवाई करता है, और हमारे पास बड़ा सुअवसर है कि हम करीब 50 सालों से यहाँ ज्यूरिख में और हर एक आखिरी इतवार को जो हर महीने का होता है, हम उस आत्मिक वचन को, उस रूहानी खुराक को लेते हैं और खुदावन की महिमा के लिए एक गवाही देना चाहता हूं कि मैं भी शुरू से मैं इन मीटिंग्स में बगैर किसी नागे के, बगैर किसी गैप के भागी होता रहा हूं, शामिल होता रहा हूं और इस लंबे वक्त में मैं कभी भी हतोत्साहित यानी डिसअपॉइंट नहीं हुआ और मुझे बहुत बहुत ही बड़ी आशीष मिलती रही. और मैंने कई बारी वचन जब प्रचार किया जा रहा था, कलाम दिया जा रहा था, तो मेरी हीलिंग भी हुई, मैं हील भी हुआ. मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस अनुग्रह के लिए, इस फजल के लिए कि उसने हमारे प्यारे भाई फ्रैंक को अभी तक इस उम्र तक सही सलामत रखा. करीब करीब वो 90 साल के हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुअवसर है क्योंकि हमने वो फजल पाया, वो अनुग्रह पाया जिसके हम काबिल भी नहीं हैं और जिससे कि हमें आत्मिक जीवन मिलता है. और इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं इब्रानियों 4 से पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 4 और उसकी 12 से 16 आए थे. इब्रानियों 4 12 से 16
powerful and sharper than any two-edged sword.
इब्रानियों 4 12 से 16
even to the dividing asunder of soul and spirit.
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी चोखा है और वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं या फजल पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. मैं और पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों 5 और 5 से 10 आयत तक. जैसे वैसे यीशु मसीह महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, परन उसको उसी ने दी जिसने कहा था, ये मेरा पुत्र है और आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है. इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकसदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने उससे जो उसे मौत से बचा सकता था दुआएं करी और विनती करी और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों में सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब तक ये महान संदेश ये हमेशा हमेशा के लिए कायम है। ये कलाम हमेशा के लिए कायम है और ये हमारे पैरों के लिए रोशनी है। आमीन। और अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे प्रेम के लिए और तेरी ईमानदारी और वफादारी के लिए, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नया है, क्योंकि तू आज भी वही खुदावंद है और तेरा वचन और तेरा कलाम आज भी जिंदा है और वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। और हम बड़ी गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम एक बार फिर सुन सकते हैं कि आत्मा यानी रूह कलीसियाओं से क्या कहता है, जिससे तेरा कलाम जो भेजा जाता है वो वापस खाली नहीं आता और उस काम को पूरा करके आता है, कामिल करके आता है जिसके लिए भेजा गया। और हम तेरे सिंहासन की ओर आना चाहते हैं जिससे कि हम सबकी मदद की जा सके, हम मदद पाएं और हम अपनी आशाएं भी तेरे ऊपर रख देते हैं, अपने ख्यालों को तुझ पर रखते हैं कि तू हमारी मदद करे, कि जो तुझे पसंद है बात वो खुदावंद हम पर नाजिल हो, हम पर ठहरे, हमारे अंदर बास कर, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे ज्यादा कुवत वाला और शक्तिमान है जो कि बाहर है, जो संसार में है। और अपने ईमानदार वफादार सेवक के साथ हो और उसकी मदद कर, उसकी अगुवाई कर और अपनी आत्मा से भर दे, अभिषेक कर और उसके जीवन को दोबारा से तरव ताजा कर दे। और जितने भाई बहन जो सेवा जितने भाई लोग जो सेवा करने वाले भाई लोग हैं और जो सारे संसार में पाए जाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और जो काम वो कर रहे हैं वो सिर्फ उस अनंत जीवन की राह पर, अनंत जीवन के शान तक ले जाने के लिए कामिल ठहरे। तूने क्रूस पर फतह पाई है, जीत पाई है और आज फिर और वो जो क्रूस की फतह है, वो जो जीत है, वो हमारे बीच में सामर्थ के साथ, बड़ी कुवत के साथ से नाजिल हो सके। और तू ही सच्चा खुदावंद है और तेरे को ही सारी महिमा और आदर मिले और सारी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं भाई फ्रैंक भी आपको खैर मकदम और अभिनंदन करता हूँ, ग्रीट करता हूँ आज सुबह जो नजदीक और दूर हैं। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन सकते हैं जो ज्यूरिख से आ रहा है। हम बहुत आभारी हैं कि इस वचन के लिए जो अभी पढ़ा गया प्रारंभ में, शुरू में पढ़ा गया, ये हमारे लिए बड़ी गहराई से हमारे मनों में उतरा। हम सोच सकते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है। हम बड़े शुक्रगुजार, हम भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, और सारे भाइयों के जो स्विट्जरलैंड से हैं, कि ये संदेश, ये संदेश जो है, ये सारे संसार में, सारी दुनिया में पहुंच सकता है और सब इसको सुन सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। भाई ब्रैनम ने जब वो दो देशों में, जब वो जर्मनी में थे और वो स्विट्जरलैंड में भी थे, दोनों जगह में गए थे, और हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारा उस सेवकाई के अंदर हमारा डायरेक्ट एक हिस्सा था जो खुदावन ने वादा किया था कि इस वक्त में उसने अपने वचन में कहा, इस वक्त के लिए, और मैं खास तौर पर शुक्र करूंगा कि खुदावन ने शुरू से ही वो वफादारी, वो ईमानदारी, वो ईमान, वो विश्वास दिया कि जिस बुलाहट में उसने मुझे बुलाया, जिस पुकार से उसने मुझे बुलाया, उसने उसकी समझ दी और भाई ब्रैनम को उसने बताया कि एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सवाल खड़ा हुआ भाई ब्रैनम के साथ नहीं। भाई ब्रैनम, हम जानते हैं, मान रखते हैं कि वो खुदावंद की तरफ से भेजा गया खादिम है, सेवक है, और जैसा अभी पढ़ा गया, इसको एक बारी दोबारा से पढ़ें। हम उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, उस मजमून में दोबारा जाएंगे कि खुदावंद ने हमारे लिए एक महायाजक बनाया। पहले मेरे सामने ख्याल आता है कि 11 जून 1933, जब भाई ब्रैनम को ये पुकार, ये काल, ये अगुवाई मिली कि वो इस संदेश को लाएं, और फिर मैं सोचता हूँ 11 जून 1958 में, डैलस टेक्सास में, जब भाई ब्रैनम, जब बातचीत के बाद में उन्होंने मुझसे कहा, भाई फ्रैंक, आप जर्मनी जाएंगे वापस इस पैगाम को, इस संदेश को लेकर, इस मैसेज को लेकर। हम बड़े आभारी और इतने शुक्रगुजार हैं कि वो सेविकाई, वो खिदमत जो खुदावन ने मुझे बख्शी, ये उससे डायरेक्टली, उस चीज से लिंक है, उससे कनेक्टेड है जो भाई ब्रैनम को सेविकाई मिली। हम कुछ वचन की बातों को सुनेंगे और हम उसके अंदर जाएंगे, दोबारा सुनेंगे, और सब लोगों, सब जुबानों के लोग, और जितने सेवा करने वाले भाई हैं, और उन सबको आशीष मिले, और उनको वो सारी आशीषें मिले खुदावन की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है, ये फिर एक बार से फजल है और अनुग्रह है कि हम इस वक्त को समझ सकते हैं कि हम कौन से वक्त में रह रहे हैं, और जो वो वादे खुदावन ने हमसे किए हैं। अब पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं इब्रानियों हिब्रियों 7 और उसकी पहली आयत हिब्रू 7 और पहली आयत. ये मलकिसदक शलीम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. जैसा अभी हमने पढ़ रहे हैं पुराने नियम के अंदर पुराने यादनामे में हमारे खुदावन ने वो राजा था, वो महायाजक था, वो प्रधान सेवक था, वो सब कुछ था पुराने नियम में पुराने यादनामे में. और यही जो नए नियम में नए यादनामे में आया और ये जाहिर हुआ ये जहूर में आया. और दूसरी आयत में देखिए इब्रानियों 7:2, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया. ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा है. हाँ जी, ये वो राजा भी है, वो शांति का राजकुमार भी है, वो शलेम का राजा है और यरूशलेम का राजा भी है. हम कितने आभारी हैं, कितने शुक्रगुजार हैं हम इस बात के लिए कि हम आज उसी खुदावन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को जानते हैं जो पुराने और नए अधनामे का एक ही खुदावंद है. उसके नाम को आशीष मिले, महिमा मिले. और तीसरी आयत अब हम पढ़ रहे हैं, उसका ना पिता और ना माता और ना वंशावली है और ना आदि है और ना अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है. देखिए पुराने नियम में ना तो माता ना पिता, पर फिर भी वो एक प्रधान सेवक है, हाई प्रीस्ट है, महायाजक है. देखिए इस बात को, ये कितनी अनुग्रही बात है और कितनी आशीषित बात है. और नए नियम में वो हमारे पास आया और वो वही राजा बना रहा, वही शांति का दूत बना रहा और वही महायाजक बना रहा. हम पढ़ते जाएं आगे, चौथी आयत अब इब्रानियों 9 और 7 को हम पढ़ रहे हैं. दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक बार ही जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चलाता था. अब देखिए, ये कितना खास मजबून है विषय हमारे लिए, जो हमारे लिए हमारी नजात से कनेक्टेड है. जैसे कि महायाजक जो वहां पवित्र अति पवित्र स्थान में जाता था, पाक तरीन जगह में जाता था और वो महायाजक बन के जाता था, इसीलिए हमारा खुदावंद भी वो अपना खून लेकर के और उस पाक तरीन जगह में पहुंचा जहां पर वाचा का संदूक था, अहद का संदूक था और हमारा खुदावंद और हमारा छुटकारा कराने वाला खुदावंद महायाजक बन के उसने अपने ही खून को वहां पर ऑफर किया, सौंपा चढ़ाया और तब हमारा छुटकारा उसने पा लिया। हालेलुया। और देखिए, हम जानते हैं वो ब्रेस्ट प्लेट पहना करता था, ये जो कि छाती पर पहनते थे, और उनमें 12 पत्थर लगे होते। ये सारी की सारी ब्रेस्ट प्लेट उसने अपने सीने पर पहनी। खुदावन का कितना शुक्र हो इस बात के लिए कि इसराइल की 12 की 12 जो गोत्र थे, जो कबीले थे, वो उसमें इंक्लूडेड थे, वो उसमें शामिल में थे, वो खुदावन के प्रोग्राम में शामिल थे। और ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, इसकी एक बहुत खास पहचान थी, जिसके अंदर इसको उरीम और थुमीम कहते थे। और तब ऐसा हुआ, जब कोई कुछ कहेगा और अगर वो बात सही है, तो एक अलौकिक सुपरनेचुरल लाइट उस में से, उन पत्थरों के नगों में से निकल के वो लाइट आएगी और बताएगी कि किसी ने ये बात सही कही है। और अगर किसी ने कोई बात कही जो सही नहीं है, तब वो नहीं चमकेंगे, उसमें से रोशनी नहीं निकलेगी। ये वो न्याय था, ये चीज का प्रमाण था, ये चीज को बताता है। आज भी हमारे साथ ये बात सही है कि देखिए मेरे भाई और बहनों, हम सब ये बात तो समझें जो खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं, सेवा करते हैं, हम सबको इस ब्रेस्ट प्लेट को पहनने की जरूरत है। और हम इसको, और ये जो शिक्षाएं हैं और जो 12 शागिर्दों की जो शिक्षाएं हैं, ये हमारे लिए वो ब्रेस्ट प्लेट हैं, ये परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमको दी हैं। और हम सब समझें कि जो पुराना और जो नया अहदनामा है, वो अपने आप में कंप्लीट है, कामिल है और सिद्ध है, परफेक्ट है, और कोई भी इसके अंदर कुछ भी जोड़ नहीं सकता। और ये जो वाचा होती है, अहद होता है, ये आखिरी विल होती है, आखिरी अहद होता है। पुराने अहदनामे में ये सारी की सारी बातें एक छाया थी, एक शेडो थी, जो दिखा रही थी कि आगे कुछ आने वाला है। और जो नए नियम के अंदर, नए नहद के अंदर आकर कामिल हुआ और दिखाया गया, वो पुराने अहद में उसकी छाया दिखाई गई थी। और वहां लिखा है कि तुमने उन्हें परखा और वो कहते हैं कि वो प्रेरित हैं, और जो नहीं है वो क्यों नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षा, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है, जो आज अपने आप को प्रेरित करते हैं, वो पुराने जो पुरातीन, जो बुजुर्ग शागिर्द थे, प्रेरित थे, उनसे उनकी शिक्षा और तालीम मेल नहीं खाती। और आज हर चीज जो इस कलाम में नहीं लिखी, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, ये वो बात है जो के खालिस और कामिल खुदा का कलाम है, जिससे जिसमें कुछ भी जोड़ा और कुछ भी कटाया नहीं जा सकता। खुदावन का बहुत शुक्र हो उस बात के लिए। पढ़ें, अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9 बाब 11 और 12। इब्रानियों 9:11 और 12 को अब हम पढ़ रहे हैं। पर जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू का नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत का छुटकारा प्राप्त किया हमेशा का छुटकारा प्राप्त किया खुदावन हमारे जिंदा खुदावन का शुक्र हो एक ही बार उसने वो सारी की सारी हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए हमारा छुटकारा प्रदान किया पा लिया हमारे लिए अपने ही लहू को बाहर करके जो क्रूस पर बहाया गया भाइयों और बहनों हालांकि आज शिक्षा के अनुसार शायद ये इस बात में पूरा न उतरे पर फिर भी हमको इस नुक्ते को प्रचार करने की प्रीच करने की जरूरत है जो भी जो बगैर छुटकारा के बगैर नजात के जाना चाहता है हमेशा की जिंदगी में वो तो उसके लिए उसका हरजाना उसको देना पड़ेगा खुदावन का बड़ा शुक्र हो कि जिसने वो आशीषित मनुष्य है जो अपनी जिंदगी के रहते रहते खुदावन के इस फजल को पहचान ले और इस बात को समझ सके कि खुदावन ने हमारे लिए क्या किया और हमें खुदावन के जो उस खून को जो हमारी नजात के लिए बहाया गया जो उसने उस होलीएस्ट ऑफ होली में जाकर के ऑफर किया और चढ़ाया इससे ही हमारी नजात है और ये जो इनाम ये जो फ्री गिफ्ट फजल की हमको मिली ये हमने इसको रिसीव किया इसको हासिल किया इसको रिकॉग्नाइज किया सारे के सारे जो राजे महाराजे और खुदावन के बेटे और बेटियां जो अनुग्रह से जिनको मिला हम पढ़ते हैं फिलिपियंस फिलिपियंस दो बाब और 7-11 फिलिपियंस 2:7-11 फिलिपियों 2:7-11 पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में अपने आप को दीन किया यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु सहली इसी कारण परमेश्वर ने इसीलिए पुराने नियम में ना तो कोई बाप था और ना माँ थी जो आदम की वाटिका में चलता था वो जो आदम से बात करता था उसने अपने ही स्वरूप में बनाया ये वही राजा और वही महायाजक और वही सब कुछ था ये सब कुछ था संपूर्ण था और नए नियम में नए अधिनामे में और वो हमारी तरह इंसान बन गया ऐसे जब देखिए पैदाइश में जाने से पहले उसकी पैदाइश में वो इंसान बना जब वो पैदा हुआ तो वो इंसान बना इंसान की शक्ल में आया और मनुष्यों की शक्ल में वो पैदा हुआ जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें हम हर बात में एक दूसरे को समझ सकते हैं और हम उस प्रेम को संबंध को बना सकें खुदावन ने हर चीज के लिए हर चीज का ध्यान रखा। आगे आठवीं आयत, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मौत यानी क्रूस की मौत भी सहली। ये सबसे सबसे जबरदस्त आयत है। हम जानते हैं कि जो कि आज्ञा ना मानना और ईमान ना रखना, यही वो असली गुनाह है जो अदन की वाटिका में, बागे अदन में हुआ था। ईमान ना लाना और हुक्म ना मानना, ये दोनों, इसलिए ईमान और हुक्म मानना ये साथ साथ चलते हैं। वो खुदावंद हमारा खुदावंद ईमानदार रहा और हुक्म मानने वाला आज्ञाकारी भी रहा। क्योंकि जो खुदावंद के साथ भी क्रूसीफाई हुए हैं उनको भी ईमानदार और उनको भी ओबीडियंट यानी हुक्म मानने वाले बनना है। ये नहीं, ऐसा नहीं, वी हमारे को नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तब ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती जाती हैं, जैसे कि पैदाइश पैदा होना जरूरी है उसके साथ, पर जिस वक्त जब पैदाइश होती है तब एक इंसान इंसान का रूप कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है, कामिल होता है। और जब बढ़ोतरी होती है तब हम देख सकते हैं कि सारी जगह कि हमें कोई उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो ग्रोथ तो अपने आप होती रहती है। इसी प्रकार से आत्मिक बातों के बारे में भी है कि जब जो खुदावंद के घराने में पैदा होता है, वो जब खुदावंद हमारे अंदर होता है तब उसका बड़ा असर हमारे ऊपर होता है, और तब हम ईमानदारी और आज्ञाकारी होने के नाते हुक्म मानने के साथ सबसे ज्यादा महिमा अपने प्रभु को देते हैं। और नवीं आयत अब हम पढ़ रहे हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है। कितनी अद्भुत आयत हमने पढ़ी, जैसा लिखा है कि सारे घुटने जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, वो खुदावंद के आगे झुक जाएंगे, और हर एक जुबान वो इस चीज का इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। कितनी महिमा की बात है, कितने आभारी और धन्यवादी हमको होना चाहिए, कितने शुक्रगुजार हमको होना चाहिए कि हम सिर्फ इन आयतों को ना सिर्फ देखें पर हम इनका मतलब समझें, इनको पहचानें। क्यों हमारे खुदावन ने जो पुराने हैदनामे के अंदर जो वो इंसान बन गया नए हैदनामे में आकर, हमारा खुदावन और एक बेटे की शक्ल में आया, ये बताने की खास जरूरत है। जहाँ राजा लिखा है वहाँ राजा, जहाँ मेल कराने वाला वहाँ मेल कराने। इन बातों की समझ हमें, इन बातों की समझ सही प्लेसिंग में होनी चाहिए। एक बेटा होकर वो पैदा हुआ, बेटा बनके वो पैदा हुआ, बेटे की पैदाइश हुई, जिससे कि हम खुदावन के बेटे और बेटे बेटियां बन जाएं और वो हक हमें शामिल हो जाए जो कि बेटे और बेटियों को मिलता है। और हालांकि उसने हमें पहले से ही जाना और चुन लिया, हम इस दुनिया में आकर गुम गए थे, भटक गए थे, हमें पहले से ही चुना था और हम पहले से ही अनंत जीवन के भागी थे, हम खुदावन के साथ थे, हम पुरानी उस इटर्निटी में खुदावन के साथ थे। पर जब वो दुर्घटना हुई, जो बागे अदन में, अदन की वाटिका में वो दुर्घटना हुई, तब सब कुछ एकदम से पलट गया और गड़बड़ी आ गई और गलतियां आ गईं। और फिर खुदावन ने क्या जो निश्चय किया था, तब वो हुआ जो खुदावन ने सोचा था। पर देखिए, यहाँ पर एक नुक्ता है जो मैं कहना चाहता हूँ। जो खुदावन की जो कामिल ख्वाहिश हमारे लिए कि हम उसके बेटे और बेटियां बने, हम अपने आसमानी बाप के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे, ये उसकी कामिल खास, ये उसकी कामिल इच्छा है। पर उसकी परमिसिव विल में, जो उसकी परमिसिव विल थी, जिसमें उसने ऐसा अनुमति दी कि गुनाह आए और इंसान गुनाह में गिरे और शैतान इस नुकसान को कर पाए, और फिर वो जो गुनाह में गिरना था और नाफरमानी थी और ना ईमानदारी बेईमानी थी, वो जो इंसान में आ गई, उसने उस सब को अपने ऊपर उठा करके अपने खून के द्वारा उसकी सफाई करी और अपने आप को उसने अपना फिदिया हमारे लिए दे दिया, हमारी खातिर दे दिया, जिससे कि हम उस हालत में दोबारा से वापस आ जाएं, उस रिश्ते में दोबारा से आ जाएं जो खुदावंद की कामिल मर्जी में पाया जाता है। इसलिए एक बार फिर इस बात को समझें कि खुदावंद की एक कामिल मर्जी है और एक उसकी ऐसी मर्जी है जिसमें वो कुछ चीजों को होने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। वो हमें अपनी परमिसिबल विल यानी अनुमति वाली इच्छा से निकाल करके और हमारा छुटकारा करा करके, हमारा फिदिया दे करके हमें अपनी कामिल इच्छा में यानी कामिल मर्जी के अंदर शामिल करता है। तभी हम खुदावन के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी में रह सकते हैं, जैसा लिखा है जैसा पहला यूहन्ना उसके पांचवें बाब में और उसके ग्यारहवीं आयत में लिखा है, जो खुदावन का बेटा जिसके पास है उसी के पास हमेशा की जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। जो हमेशा हमेशा तक जिंदा रहना चाहता है वो खुदावन यीशु मसीह को जरूर माने कि वो ही नजात दहिंदा है। मैं फिलिपियों 2:10-11 को पढ़ते हैं।
That at the name of Jesus, every knee should bow.
क्योंकि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक जीव हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। खुदावन के नाम की प्रशंसा हो। मैं ये जानता हूं कि ये सारे जो वचन हैं, ये जो ये इतने अद्भुत हैं और ये इतने अलौकिक हैं, और बार बार इनको जब हम पढ़ते हैं तब हम इनको बार बार प्रचार भी करते हैं, बार बार इनके बारे में बताते और समझाते हैं कि इनकी अहमियत क्या है, कि क्या फजल खुदावन ने हमको दिया। ना सिर्फ इसलिए कि हम खुदावन के बच्चे बने, ना सिर्फ हम छुटकारे में और मसीह में ईमान लाए, बल्कि के इस कलाम के अंदर जो एक एक वादा किया गया है उस पर हम ईमान लाएं, हर एक पर हम ईमान लाएं। यहाँ पर ये जो आयतें लिखी गई हैं, जो हमारे वक्त के लिए लिखी गई, कि खुदावन ने कि एक नबी को भेजेगा एलिया के रूप में, जैसा कि आखिरी आयतों में लिखा है, मलाकी के आखिरी बाब की आखिरी आयतों में लिखा है कि जो के बच्चों के मनों को उन पुरखों की तरफ, बुजुर्गों के मनों की तरफ, उस शिक्षा की तरफ लेकर जाएगा। और अगर हम और भी सारी आयतें देखें, इससे पहले कि खुदावन की वापसी हो, एक आखिरी संदेश ये सारी दुनिया के अंदर पेश किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, जैसे कि आखिरी पुकार भेजी जा रही है। खुदावन के आने से पहले ये आखिरी पुकार भेजी जा रही है, और अगर ये लिखा है जैसा कि प्रेरितों के काम एमाल और 3:20 में लिखा है, एमाल 3:20 में लिखा है कि हमारे खुदावन, हमारा खुदावन आसमानों में रहे तब तक, ये खुदावन ने कहा, जैसे खुदावन ने अपने नबियों से कहा जब से दुनिया बनी। हम इस चीज का ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावन आसमानों में वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है जब तक, जब तक के ब्राइड की जो कलीसिया, जो दुल्हन की कलीसिया है, सारा का सारी कलीसिया नहीं, कलीसिया और रूह दोनों का कहना जरूरी है। आज सारे के सारे कलीसियाओं को जो संदेश दिए हैं उसमें लिखा है कि वो इस बात को समझें कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है, और कलीसिया और तब रूह और दुल्हन कहते हैं आ, रूह और दुल्हन कहते हैं आ। आखिरी जो पुकार है, सारी की सारी कलीसियाएं उसमें से, सारी कलीसियाओं में से जो दुल्हन कलीसिया है वो बाहर बुलाई गई है, और वो जब वो बाहर जाती है, वो दुल्हन बन के बाहर जाती है, तो वो दुल्हे को मिलने जाती है। और हम मुकाशवा में पढ़ते हैं कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार करके रखा है, मत्ती 25, और वो कहता है कि दुल्हा आता है, और फिर हम और देखिए वो दुआ, प्रभु शादी के बोझ में, शादी की दावत में शरीक होते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आखिर में, जैसे कि खुदावन ने कहा, जैसे कि उसने वादा किए पहली आमद के लिए, उसी तरीके से उसने वो वादे भी दिए हैं जो उसकी दूसरी आमद की तैयारी करते हैं, और जो उसकी दूसरी आमद के बारे में है वो वादे भी हैं, और जो खुदावन के हैं वो सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे नहीं और पढ़ के एक साइड में रख देंगे, पर ना सिर्फ वो बाइबल के अक्षरों को पढ़ेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे नहीं और साइड में रख देंगे, नहीं, वो तो उन बातों का मुकाशफा हासिल करेंगे। मुकाशफा हासिल करना जरूरी है। देखिए, इतने सारे संप्रदाय और डिनोमिनेशन हैं जो आज वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में जुड़ गए, मिल गए, एक बन गए, और वो सारे के सारे तो अलग शिक्षाएं, अलग अलग विश्वास में, अलग अलग बातें विश्वास करते हैं, पर वो कहने को जुड़ गए हैं। और जो उसके लिए जिम्मेदार इंसान है वो कहते हैं कि हम अलग अलग तो हैं पर फिर भी हम एक हैं। वो कहते हैं हम तो होली ट्रिनिटी में एक ही हैं, हम एक ही जुड़े हुए हैं उसमें। ये कितने शर्म की बात है, इसको और किसी शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। इतनी ये ट्रिनिटी वर्ड जो है ये कलाम के अंदर, वचन के अंदर पाया ही नहीं जाता, ये तो पाया ही नहीं जाता। बाइबल के अंदर इस नाम का कोई शब्द नहीं है, वहां पर हमेशा हमेशा का इटर्नल बेटा नहीं है, और बेटा खुदा ये वर्ड भी वहां नहीं पाया जाता। ये डिनोमिनेशन लोग जो हैं, ये इस वो जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वो इस पर बिलीव करते हैं, इसलिए ये सुनना, ये समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये वो दिन है जो खुदावन ने बनाया, और ये वो समय है, ये वो घंटा है, ये वो घड़ी है जिसमें कि केवल वचन, खालिस कलाम ही बयान किया जाए और प्रचार किया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं केवल एक ही खुदा है, एक ही खुदा, एक ही छुटकारा, एक ही नजात है, एक ही हमेशा की जिंदगी है। ये खुदावन जो एक खुदावन है, इसने अपने आप को जाहिर किया और पैदाइश दो में, जो रूह है वो टाइम में आ गया, वो समय के दौरान में आ गया, और उसने अपने आप को जाहिर किया, और उसने याहवे और लॉर्ड बन के, खुदावन प्रभु बन के वो आया, और उस पुराने अहदनामे में भी, और वो देखिए खुदावंद के साथ, और फिर खुदावंद खुद, वो इमैनुएल, कहा गया कि तुम उसका नाम इमैनुएल उसको कहना, खुदावंद हमारे साथ, और फिर उसका नाम यीशु रखना, यानी के याशुआ, यानी के याहवे बचाने वाला, नजात दहिंदा, वो इलोहिम है, वो याहवे है,
डिपेंडिंग
इस इन विच, क्योंकि कि वो किस ऑफिस में, वो किस ओहदे से बात कर रहा है, उसने हमें बताया अपने कलाम में, कितनी बड़ी बात है, मैं अपने खुदावन का कितना शुक्रगुजार हूँ, अपने नजान दहिंदा का कितना शुक्रगुजार। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, हर इंसान जो मत्ती 28:29 पर रुक जाता है, 28:19 पर रुक जाता है, उसको ये सोचना चाहिए वहाँ वो उस पर सोचना चाहिए कि वहाँ एक नाम के बारे में कहा गया है, एक सिंगल नाम के बारे में कहा गया है जिसमें कि बाप और बेटा और रोल को जो तीनों इंक्लूडेड हैं, उस एक नाम में है। वो कौन सा नाम है जिसमें तीनों हैं? बाप नाम नहीं है, बेटा नाम नहीं है, पाखरू नाम नहीं है, तो कोई नाम है, वो एक नाम है। ओ मेरे खुदावन, हमें जागने की जरूरत है, हमें अपने होश में आने की जरूरत है कि वहाँ आने, उस होश में आने की जरूरत है, खुदावन के कलाम में वापस जाने की जरूरत है। जो लोग एमाल दो बाब से, प्रेरितों दो बाब में बपतिस्मा लिए, वो सब ने खुदावन यीशु मसीह के, खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। मैं सबको कहना चाहता हूँ और जोर देकर कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, जो बाइबल के अनुसार जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, आप अपने बपतिस्मे को सीधा करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दें, इस समझ के साथ। और इस समय में जो हम रह रहे हैं, ये जो वक्त दिखाई दे रहे हैं, हम नहीं ये बता रहे हैं, हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कि हम खबर में देख सकते हैं। खुदावन सारे भाई बहनों को बरकत दे, आशीष दे, जो सेवा करने वाले भाई हैं उन पर और सब जगह पर, सारी भाषाओं में, सारी जगहों पर सबको प्रभु आशीष दे। और खुदावन ऐसा फजल दे कि हम उनको उनमें जाएं, उस झुंड में रहें जो बुलाए हुए हैं, जो कह सकते हैं, जो आत्मा में होकर कह सकते हैं कि दुल्हन और रूह कहती है आ, और जो कहता है, और वो कहता है कम, और हम ये कहते हैं, हम ये जानते हैं, विश्वास करते हैं, खुदावन का आना बहुत ही बहुत ही बहुत ही करीब है। और आशीष होता हूँ, बहुत 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 आशीषें आप पाएं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you.